तो हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। अथ एनम अस्तोत अवधार्य पुरुषम परम नत अंग नृतधि कृत अंजलि स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभि प्रभावचे प्रभाववेत्। अथे नमस्तो दवधार्य पुरुषं परम नतांगकृतधीकृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभि प्रभाववेत्। अथे नमस्तो दवधार्य पुरुषं परं नतांगकृतधीकृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभि प्रभाववेत्। अथे नमस्तो दवधार्य पुरुषं परं नतांगकृतधीकृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभि प्रभाववे। अथे नमस्तो वधार्य पुरुषं परं नतांगकृतधीकृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिकागृह विरोचयन। धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। अथ तत्पश्चात एनम बालक को अस्तोत स्तुति अर्पित किया अवधार्य यह निश्चय करके कि बालक भगवान था पुरुषम परम पुरुष को परम परम दिव्य नतंग गिरकर कृतधि एकाग्र होकर कृतंजलि हाथ जोड़कर स्वरोचिषा अपने शारीरिक सौंदर्य के तेज से भारत हे महाराज परीक्षित सूतिका गृहम वह स्थान जहां भगवान का जन्म हुआ विरोचयंतम चारों ओर से प्रकाशित करते हुए गत भी भय से रहित होकर प्रभाववेत भगवान के प्रभाव को जान सका। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित वसुदेव यह जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमगा कर रहा था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इतने महान आश्चर्य से चकित वसुदेव ने अब अपना ध्यान भगवान पर एकाग्र किया। वे भगवान के प्रभाव को समझकर निर्भय हो गए, क्योंकि वे जान गए कि मेरी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। गत भी प्रभाववित, यह जानकर कि साक्षात भगवान उपस्थित हैं, उन्होंने इस प्रकार यथोचित रूप में स्तुति की। तो अध्याय का नाम है कृष्ण जन्म, और बड़ा ही सुंदर अध्याय चल रहा है, और काफी लंबा समय लगेगा ये पूरा प्रसंग चलते चलते, क्योंकि परीक्षित महाराज ने भी पूरा समय लिया था, सात दिन का टाइम था उनके पास, और सात दिन के टाइम में उन्होंने कहा जी मुझे बताएं सर्ग विसर्ग कैसी सृष्टि हुई, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे भगवान की लीला, क्या सुनना चाहिए अंतिम समय में व्यक्ति को, क्या मंत्र जपना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में जितने भी प्रसंग हैं, जितनी भी कथाएं हैं, ये सब के सब जो लोग हैं, जो कथा हो रही है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको मालूम था कलयुग के लोग तो पूछेंगे नहीं प्रश्न कि भगवान प्रभु जी मैं मरने वाला हूं क्या करूं, आप कोई बताओ ना जगह जहां पे माथा टेकूं और मेरी बीमारियां ठीक हो जाएं, हम तो इलाज ढूंढेंगे। हम लोग एक से एक दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, मदानता में जाएंगे, मैक्स में जाएंगे, हम लोग हर तरह का तरीका अपनाएंगे कि मैं मरूं ना। परीक्षित महाराज तो काफी जवान भी थे उस समय, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को भी देखते जो मरणासन है ऑलमोस्ट, जिनको बोलते हैं मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, टांगे कब्र में, ऐसी स्थिति वाले लोग भी अंतिम समय तक पूरा पैसा अपना सब कुछ लगा के रखते हैं, बच जाऊं बस कुछ समय और चल जाए मेरा। क्या कारण कि इस जीवन को जीने की जो भोग इतनी मुश्किल से इकट्ठे किए, जिसमें पूरी एनर्जी लगा दी, उसको छोड़ना नहीं चाहते, और जब उनको लगता है कि अब अंतिम समय आ गया और छूटना है और सब निकल जाएगा, तो बड़ा भयावह स्थिति हो जाती है ऐसे लोगों की, और इसलिए वो नए नए तरीके अपनाते हैं कि मैं बचा रहूं, मैं जिंदा रहूं, और इतनी दर्दनाक मृत्यु होती है, इतने भयानक मृत्यु होती है ऐसे लोगों की कि जो भय के साथ प्राण त्यागते हैं। हमारी ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए भगवान के भक्तों ने हमें रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे प्रश्न पूछ लिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए जो कि संसार में सबके साथ कहीं ना कहीं होते हैं, और अंतिम समय में क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, और चार दिन खत्म होने के बाद तीन दिन तो खाली दसम स्कंध पे लगाया कि भैया बताओ कृष्ण की लीलाएं तो और अच्छे ढंग से बताओ, क्योंकि यही तो हमारे आराध्य हैं, इन्होंने तो मेरी रक्षा की थी माता के गर्भ में, और इन्हीं को तो मैं ढूंढता रहता था, इसीलिए तो मेरा नाम परीक्षित पढ़ा, मैं सबका प्रशिक्षण ही करता रहता था, वो कहां है जिसको मैंने माता के गर्भ में देखा, और इसलिए उनका नाम एक परीक्षित पढ़ा। और अब दसम स्कंद शुरू हुआ, और दसम स्कंद में भगवान के जन्म की बात हो रही है। वेदों में, पुराणों में, तो पुराणों में तो मिलता है, लेकिन वेदों में या अन्य ग्रंथों में, दूसरे धर्मों के ग्रंथ में, कुरान इत्यादि में जन्म की बात नहीं की जाती भगवान की। उनको लगता है भगवान का जन्म होता ही नहीं है, भगवान जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए बस वो है लेकिन है नहीं, मतलब दिखता नहीं है, वो उसको महसूस नहीं कर सकते, उसकी फोटो नहीं, उसकी लैमिनेशन नहीं, उसकी प्रतिमा नहीं, ना तत् प्रतिमा अस्ति, नहीं बन सकती प्रतिमा उनकी, कोई जन्म नहीं दे सकता भगवान को। ठीक है, जिसने जन्म दिया तो भगवान वो हो जाएगा, वो इतने शक्तिशाली व्यक्ति को जन्म देगा तो उससे शक्तिशाली तो वो रहा होगा ना जिसने जन्म दिया। तो इसलिए ये कल्पना करना कि भगवान का जन्म होता है, ये साधारण बात नहीं, कोई समझ नहीं सकता। इसलिए अन्य धर्मों में भी बोलते हैं कि भगवान अजन्मा है, कुरान में भी कहा गया है उसका जन्म नहीं होता, और हमारे यहां भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अजन्मा है कि नहीं, अजनिमाई, अजनिताई, है ना, ये सब नाम का, अज का मतलब क्या है, जिसका जन्म नहीं होता, लेकिन हमारे यहां तो चल रहे हैं लोग अजनिमाई अजनिताई भी है, ये उनके दास हैं, बट वो थे यहां पर उपस्थित थे, लीला की उन्होंने, तो नहीं होता जन्म, यस नहीं होता भगवान का जन्म। लेकिन फिर क्या होता है वो, क्या फिर ये क्या चल रहा है, क्या मूर्ति पूजा हो रही है, क्या ये लोग मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, क्या चक्कर है फिर ये? नहीं, जन्म नहीं होता वैसा नहीं होता जैसा हमारा होता है। पांच तत्वों के शरीर के साथ जो जन्म लेता है, जिसको मरना होता है, वैसा नहीं जन्म होता। भगवान इन प्रकृति से, इन तीनों गुणों से, माया के प्रभाव से, इस संसार की ड्वेलिटीज से, इस संसार का जो आठ एलिमेंट बनाने वाला है, जिसने प्रोड्यूस इन्फीरियर एनर्जी अपनी इस्तेमाल करके ये एट इन्फीरियर एनर्जी को के प्रोडक्ट्स बनाए इस संसार में, और वो प्रोडक्ट क्या है? भगवान ने कहा भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मन बुद्धि ये सब बताया उसमें। तो जो एट एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट एंड थ्री एलिमेंट्स, ये टोटल जो एट एलिमेंट्स है, जो इसको बनाने वाला है या जो प्रकृति को सृजन करने वाला है, वो इसके अंडर में नहीं है, वो इसके नियमों के अंडर में नहीं है। भगवान को इस संसार से कोई लेना देना नहीं, या इस संसार की कोई चीज भगवान को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, या कोई भी चीज छू नहीं सकती। इस संसार की वाणी, इस संसार की आवाजें, इस संसार में हमारा मन भी भगवान को छू नहीं सकता, क्योंकि इस संसार का एट एलिमेंट से बना है, और भगवान एट एलिमेंट से नहीं बने। वो तो क्या है? सत, चित और आनंद। तो इसलिए अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। और कैसे जन्म लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूं और फिर से धर्म का, नियमों का स्थापित करके जाता हूं, ताकि लोग फिर से धर्म का पालन शुरू कर दें। हर युग में, युगे युगे में, हर युग में आता हूं, क्योंकि भगवान को पता है कि ये जो मेरे सनातन अंश हैं, ममेव वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जो मेरे सनातन अंश हैं, सभी जीवात्माएं जिनको मैंने प्रोड्यूस किया है, जिनका मेक भी वही है जो मेरा मेक है, सत चित और आनंद, ये भी उसी के बने हैं, ये भी मेरी तरह ब्लिसफुल हैं, फुल ऑफ नॉलेज हैं, एटर्नल हैं, क्योंकि मैंने प्रोड्यूस किया, मेरी संतानें हैं। लेकिन इन्होंने एक मुझसे अलग होकर इच्छा की थी, क्या? भोग की इच्छा की थी। उस इच्छा की पूर्ति के लिए उनको इस संसार में भेजा गया है, लेकिन है अभी भी सच्चित आनंद, इनका मेक खराब नहीं हुआ अभी भी, बट डिजायर जो की थी उसको भोगने के लिए यहां आए। इसलिए इनको एट एलिमेंट्स के शरीर दिए, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। अब ये शरीर के बाद ये आत्मा अपने आप को क्या मान बैठा मन की मदद से? ये शरीर मैं हूं। ईश्वर हम, अहम भोगी बलवान अपी, सब बोला ना गीता में भी। भगवान कह रहे आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं ईश्वर हूं, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, मैं कंट्रोल करता हूं, जो चीजें मेरी हैं उस पर मेरा राज चलता है, और मैं इसका इंजॉयर हूं, ये सब चीजों को मैं इंजॉय कर सकता हूं, इसीलिए मैं इसको कमा रहा हूं, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। सारी दुनिया किस लिए भाग रही है सुबह से शाम तक? ईश्वर हम, मैं ईश्वर बनना चाहता हूं, अहम भोगी, मैं भोग करना चाहता हूं। तो वो जो डिजायर की थी, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक आप एक जगह खड़े हो जाए और देखिए, गाड़ियां यहां जा रही हैं, गाड़ियां यहां आ रही हैं, गाड़ियां यहां जा रही हैं, गाड़ियां यहां आ रही हैं, है कि नहीं? ऊपर से अगर अधिकारी जन देखते होंगे तो क्या देखते होंगे कि ये व्यक्ति जो है सुबह 10-6 घंटे एक ही जगह पर रहा। स्टेशन जैसे लाइट्स होती है ना, मैप पे दिखाते हैं कुछ लाइट जल रही हैं, तो ऐसे दिखाते हैं कुछ लाइट्स जल रही हैं इधर, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसमें कैसे देखा कि मोबाइल के लाइट्स, मोबाइल के कनेक्शन ऑन थे, रात को सारे आतंकवादी वीडियो गेम खेल रहे थे या कुछ और काम कर रहे थे, या उनके मोबाइल ऑन थे उस समय, तो उधर जाके 250 लाइटें जल रही थी, जाके बम छोड़ दिया, ठा सैटेलाइट से देखा, ठा वो 250 लोग खत्म। तो हमारी लाइट्स कैसे जलती होंगी? जब मोबाइल से लोग पता लगा सकते हैं आदमी जिंदा है आदमी इधर है, तो हमारे हृदय में तो परमात्मा भी है, हमारी भी तो लाइट हमेशा ऑन रहती है कि नहीं? और बढ़िया भगवान का कनेक्शन लगा हुआ है ना, जीपीएस इतना खतरनाक है भगवान का, ये जो गूगल के बेस पे हम सब लेफ्ट राइट करते रहते हैं और इस टेक्नोलॉजी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम कि वाह जी वाह कमाल कर दिया, सही रास्ते पहुंच गया, सही रास्ते पहुंच गया। लेकिन जो भगवान का जीपीएस लगा हुआ है वो तो बड़ा खतरनाक है, यहां तो सिस्टम डाउन हो जाए, सैटेलाइट कोई उड़ा दे ऊपर से तो खत्म आपका सिस्टम। लेकिन भगवान का सिस्टम जीपीएस ऐसा खतरनाक है कि वो आपको आपने कब कब क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, छुपके क्या किया, उजाले में क्या किया, अंधेरे में क्या, घर के अंदर क्या किया, एक एक का जो है क्या है, लेखा जोखा है। और जब कहानी पूरी हो जाती है हमारी, तो जब यमराज जी के दूत लेकर जाते हैं तो चित्रगुप्त जी हिसाब किताब करते हैं। तो कल पता नहीं कौन लेक्चर में बताता चित्रगुप्त का मतलब, चित्र मतलब वो चित्र दिखाता है और गुप्त मतलब जो गुप्त गुप्त काम किए। उसका चित्र का प्रदर्शन करता है, मेरा पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, एलईडी प्रेजेंटेशन होता है, और व्यक्ति ना कर ही नहीं सकता ऐसे, नहीं मैं नहीं था,
हाँ ये भी मैं था, ये भी मैं था,
सब बताते हैं उसको, है कि नहीं। और फिर जो है क्या होता है, कई लोग बड़े सीरियस बैठे हुए हैं, होता ही है, क्या करें, सच्चाई है। तो परमात्मा अंदर हृदय में है और सारी चीज जानते हैं, और भगवान ने जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली हमें इधर भेज दिया, और जो सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे लोग और सैटेलाइट से देखते हैं, जैसे उसी हमारा तरह हमारा भी देखा जाए तो क्या दिखाई देगा कि इस व्यक्ति ने यहां पर 8 घंटे ये शिथिल पड़ा रहा कहीं पर विदाउट मूवमेंट, ये जो लाइट है ऐसी रही, और जब लाइट जल गई तो एक कमरे के अंदर थोड़ा हिलता रहा ये 2-3 घंटे मूवमेंट हो गई। उसके बाद अचानक ये उठा, कुछ लोग धीरे धीरे स्पीड में और कुछ ज्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह गए, जैसे आप अपने गूगल पे भी होता ना, आप रोज की लोकेशन देख लो क्या करा मैंने हफ्ता, वैसे लोकेशन ऊपर भी चेक हो रही है, गया 7 दिन इधर, 6 दिन गया इधर, वापस आया, 8 घंटे इधर हिलता रहा, फिर वहां से इधर आया, फिर यहां थोड़ा हिला, फिर 8 घंटे के लिए शिथिल पड़ गया, ये रोज का रूटीन है। फिर अगले दिन उठा, 3 घंटे हिला कूदा, फिर गया उधर ही सेम जगह पर, फिर वहां 8-9 घंटे हिला कूदा, फिर वापस आया, फिर 3 घंटे हिला कूदा, फिर लेट गया, ठीक है। फिर संडे आ गया, अभी उधर नहीं गया ये। जिधर रोज जाता था उधर नहीं गया, अभी किधर और गया, उधर उछला कूदा, फिर दूसरी जगह के उछला कूदा, फिर रात तक यहां गया, फिर वापस आया, थोड़ा हिला डुला 1 घंटा, फिर सो गया, ठीक है। और ये एक्टिविटी में वो 3 बार आधा आधा घंटा बैठ के खाना भी खाता है, यहां कुछ खाया, यहां कुछ खाया, यहां कुछ खाया, वापस आया। तो अगर वैसे देखे ओपन में तो सारे लोग भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, लेफ्ट राइट चल रहे हैं, ताबड़ तोड़ चल रहे हैं, और किस लिए चल रहे हैं, यही सब करने के लिए, हिलना डुलना, सोना खाना पीना, यही सब रोज यही। अच्छा इसमें कौन कौन ऐसा है, इसमें बिल गेट्स भी ऐसी कर रहे हैं, आपका पचोरी पंचोरी भी कर रहा है यही, है कि नहीं, और लोग भी कर रहे हैं, भिखारी भी कर रहे हैं, सबका यही सीन चल रहा है। तो जो सुबह से लेकर शाम तक हमारा संघर्ष चल रहा है, इसलिए भगवान ने कहा मामे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, श्री श्री राधा राधे कवन कृष्ण बलराम की, जो सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है ना, लेकिन कह रहे हैं मनः षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। अब जो बेचारा ये जीवात्मा है, जो मेरा अंश है, मेरा जैसा मेक है, जिसका सच्चित आनंद है, ये संघर्ष कर रहा है। 5 senses हमारी जो हैं और 6ठा मन, इनके साथ संघर्ष कर रहा है। 5 senses हमें जहां मर्जी ले जाती हैं, जो मन आज्ञा देता है उसको, तो वो जो घूमना शूमना चल रहा है, पैसा कमाना चल रहा है, प्रॉपर्टियां बनाना चल रहा है, ये सब चीज चल रही हैं, वो इस मन के बेसिस पे चल रहे हैं। इनसिक्योरिटी है फ्यूचर में क्या होगा, अभी से ऐसा कर लूं, फिर वैसा कर लूं, यहां चलता हूं खान, ये सब चल रहा है। और एक दिन बल्ब फ्यूज हो जाएगा, खत्म, नो मोर इंडिकेशन, टू टू बीप बीप कुछ नहीं बजेगा, और एक दिन खत्म, बाकी चीज क्या हुआ, सब रह गई है। तो जो बोला ईश्वर हम भोगी, तो ये हम सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत कर रहे हैं, जो भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जितना मेरे अधिकार में होगा आई कैन इजीली एंजॉय, समझ पा रहे हैं? नौकरी पेशा, बिजनेस पेशा, ये क्या है? सिंपल सी चीज है कि आप अगर दुकान में जाते हैं और खड़े होते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, कई बार इसको पता नहीं पैसे क्या होते हैं, मम्मी क्या, मम्मी मतलब पैसा बस, तो जाता है दुकान में, घर के पास ही दुकान है, पहुंचते हैं, नॉक नॉक करते हैं, दुकान वाले कहते हैं जी क्या चाहिए, तो उसको टॉफीज दिख रही होती है, चॉकलेट दिख रही होती है, बिस्किट दिख रहे होते हैं, ऐसे मांगता है वो। दुकानदार देता है? नहीं देता। कहता बेटा जा घर जा, पैसे पैपे पैपे पैसे लेकर आ। वो बच्चा बेचारा मायूस कि मुझे दिया नहीं है, वही रोता, कहता यहां मत रहो मम्मी के पास रो जाकर। फिर जाता वापस घर में, क्या हो गया? कुछ मांगा था। अच्छा क्या बोला? पैपे पैपे। अच्छा मम्मी देती है उसको एक दो, दो का सिक्का दे देती है उसको। फिर वो आता दुकान में, लेता टिक 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 ऐसा करता है, दुकानदार देखता है अरे भाई 5 रुपए की चॉकलेट है, 2 रुपए की लेकर आया, नहीं मिलेगी, पैपे पैपे। फिर जाता रोता हुआ, पैपे। अभी उसको काउंटिंग नहीं आती 1 2 3 4 5 6 10, बट 2 4 बार वहां से धक्का मार के भगाते हैं उस बच्चे को, तो उसको पता चल जाता कि जो 10 का नोट है जिसमें गांधी छपा है वो चलता है इधर, पता चल गया। अब सिक्के अगले दिन देगी मम्मी, नहीं लेगा, क्या चाहिए? पैपे। तो फिर 10 का नोट आता है, उसे चॉकलेट आती है, खरीदता है। अब बचपन से बच्चे को भोग का मतलब पढ़ा गया कि अधिकार चाहिए मुझे भोग करने का, वो चाहिए मुझे इंजॉय करना है, तो क्या चाहिए मेरे पास? अधिकार होना चाहिए। अधिकार क्या? पैसा होना चाहिए। और पैसा कैसे मिलता है? रोने से। तो बचपन में थोड़ा बहुत रोता है, उसके बाद मां कहती है बेटा अगर जिंदगी भर भोग करना है, जिंदगी भर अपने इच्छा के अनुसार जीने, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, तो क्या कर? काम कर, मेहनत कर। फिर पूछते मम्मी क्या करूं जिससे कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार आ जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें भोग सकूं। फिर मां कहती बेटा, मां या बाप जो भी है, सब रिलेटिव बोलते बेटा इस फील्ड में जा, ये बन, वो कर, ये कर, उससे इतना बड़ा पैकेज मिलेगा। ये कोई समाज सेवा के लिए थोड़ी बन रहे डॉक्टर हम लोग। ये एक समाज में एक ही व्यक्ति है, मैं अपनी सेवा के लिए मैं डॉक्टर बन रहा हूं, आर्मी में जा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं। और फिर वो बनने के बाद अधिकार जमाते हैं, तभी तो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। ईमानदारी का मतलब ही इज वेरी मच कॉन्शियस, ही इज वेरी मच सिंसियर टू अर्न मनी। अब चाहे वो चोर हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, ही इज वेरी सिंसियर फॉर हिज ड्यूटीज। करता है, लाता है, फिर उसके बेसिस पर अधिकार जमाता है। ये प्लॉट भी मेरा है, ये प्रॉपर्टी भी मेरी, ये मकान भी मेरा है, अब मैं जो कहूं वो खा सकता हूं, बट उसमें भी लिमिटेशन है। आप दिल्ली में रहते तो दिल्ली में एक आधा मकान आपके पास है, एक आधी चीज है। कभी मुंबई जाते हैं तो आपको किराए पर रहना पड़ता है, होटल्स में रहना पड़ता है, उसके बाद तुरंत कहते हैं सर बिल आ गया, सर आप चेकआउट करना पड़ेगा। कहते हैं यार भी 3 घंटे बाद ही निकलना, फ्लाइट है। कहते नहीं सर, 1 दिन का चार्ज लग जाएगा। कहते ये होटल ही खरीद लूं क्या है? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? और मेहनत करनी पड़ेगी। या अपना मकान हो मुंबई में तो ठीक है, बार बार आना पड़ता है, तो फिर वो और अधिकार जमाने की कोशिश करता है। और जब इतनी मेहनत से उसने ये सब कमाया, संघर्ष किया, मना षष्ठाणी इंद्रियाणी, मन के साथ संघर्ष ही करता रहा, भूल गया पर्पस ऑफ लाइफ, तो इस प्रकार संघर्ष ही चलता रहा। जीवन एक संघर्ष है, ऑटो के पीछे लिखा होता ना जीवन एक संघर्ष है, सोनू मोनू तो टीनू दी गड्डी है ना पता चलता उसके 3 बच्चे हैं। संघर्ष चल रहा है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छे स्कूल में डालना, संघर्ष चलता रहेगा। फाइनली टाइम बीत जाता है और मृत्यु नजदीक आ जाती है, और फिर वो डरता है कि कैसे छोड़ूं। इस बीच अब उसको ये याद करना है, जैसे बड़ा सिंपल सा बताया आज कि भगवान प्रकट हुए, भगवान का जन्म हुआ। अब ये जो यदा यदा ही धर्म से का मतलब समझिए, हम जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन भर में, अब भगवान कह रहे हैं कि मैं बार बार प्रकट होता हूं असुरों का वध करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और सुंदर लीलाएं करता हूं ताकि ये जो संघर्षरत जीव है क्या कर सके, मुझसे आकर्षित हो सके, मेरे रूप से, मेरी लीलाओं से, मेरे गुणों से। और फिर क्या होगा, जैसे भगवान को देखते ही वसुदेव का क्या हुआ, भय चला गया, उनका दर्शन करने मात्र से, प्रभुपाद लिख रहे नीचे प्रपट में भी, गत भी प्रभावित, एकदम उनका भय चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उनको पता है अब ये तो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, भगवान साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण प्रकट हो गए, और भगवान को देखते ही उनका सारा भय चला गया कि अब मेरा कंस कुछ नहीं कर सकता, अब तो कंस आ गया, कंस आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत भय खत्म हो गया। और इतना सुंदर जो है पूरे का पूरा दैदीप्यमान हो गया, विरोचनेन्तम, पूरा का पूरा पहले उनके हृदय में प्रकट हुए भगवान, फिर देवकी के हृदय से गर्भ में आए, और फिर देवकी का जो है दैदीप्यमान हो गया पूरा चेहरा और पूरा बॉडी, और सुंदर सूर्य की तरह जो है। तो सैनिकों ने देखा, तुरंत जाके कंस को बोला, भगवान आइए देखिए। तो कंस ने देखा, उसको समझ आ गया, भैया अब आया असली व्यक्ति, जो मैंने 6-7 मार डाले वो नहीं था, अब आया ये। तो वो और बेचारा परेशान हो गया, दुखी हो गया, और डिस्टर्ब हो गया, और उसका जो है चिंतन जो है और कृष्ण की तरफ लग गया, आएगा आएगा मारेगा। और फिर बोल दिया उनको, जैसे पैदा हो तो मुझे बताना, तुरंत
चला गया।
इतने में भगवान प्रकट हुए पूरे आभूषणों के साथ। एक श्लोक छोड़ के अगर आप बात देखेंगे तो बता रहे हैं क्या क्या करके आए, भगवान पैदा हो रहे हैं, इसलिए उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनका जन्म नहीं, तो जन्म होता है तो कैसे होता है, देखिए एक साधारण व्यक्ति की तरह जन्म नहीं होता। वेदों में अगर कहा कि उनका जन्म नहीं होता, कुरान में अगर कहा कि उनका जन्म नहीं होता, वो इसलिए कहा कि वो हमारी तरह जन्म नहीं होता, हम जैसे रोते हुए खून में लथपथ बाहर आते हैं और क्या क्या रो रहे होते हैं। जन्म होते ही मृत्यु का जो है सर्टिफिकेट साइन हो जाता है कि भैया इसको इतनी तारीख में मरना है, इस दिन मरना है, और ऐसे मरना है, ठीक है कि तैयार हो जाता है। तो लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं भक्तों की रक्षा इत्यादि के लिए। तो जैसे प्रकट हुए कह रहे हैं, तब वसुदेव ने जब नवजात शिशु को देखा तो उनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी, और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म चार आयुध धारण किए हुए थे, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था, वे पीताम्बर धारण किए थे, उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, और उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे, वे करधनी बाजूबंद कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। पूरा ड्रेस पहन कर आए, पूरा सिस्टम उनका है, कौस्तुमणि छुपती नहीं, गिरती नहीं कि नहीं भगवान प्रकट हुए कौस्तुमणि तो रह गई यार वैकुंठ में, ऐसा नहीं होता है ना। ये सब भगवान के पार्षद हैं, शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं ये सारे आभूषण इत्यादि। और जब भगवान प्रकट हुए तो कौन व्यक्ति भगवान नहीं मानेगा कि सब कुछ पहन कर आ रहा भैया, तो हमारी तरह नहीं, चार भुजाओं के साथ, और फिर आते ज्ञान भी दिया उन्होंने। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अब वसुदेव समझ गए कि साक्षात नारायण है, और भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नामेति सुअर्चुना, कि अगर कोई व्यक्ति जो उसका 60-70 साल का जीवन है उसमें भक्तों के संग में रहकर मेरे नाम का जप करते हुए केवल इतना समझ ले कि मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य हैं, क्लू भी दे दिया, वैसे अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, लेकिन जन्म लेते हैं तो देखो कैसे लेते हैं। और फिर ये कह रहे हैं भगवान कि मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दोनों दिव्य हैं, ये इसकी प्रकृति को समझ जाए जो व्यक्ति, तो इस शरीर का त्याग करने के बाद वो दोबारा इस संसार में नहीं आएगा। कितनी आसान मुक्ति बना दी भगवान ने, क्या करना है बस, क्या समझना है कि भगवान का जन्म होना और उनके दिव्य कर्म, ये हमारे जैसे नहीं है, ये दिव्य धरातल पर होते हैं। तो जन्म की प्रकृति को समझना, वैसे वो अजन्मा है लेकिन जो ये समझ गया कि वो जन्म लेते हैं लेकिन इस अचिंत्य है, उसको समझना, उस प्रकृति को समझ जाए तो वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। और फिर उनके एक एक कर्म की प्रकृति को समझना कि कौन सा कर्म किस लिए किया, उसकी दिव्यता को समझ जाएगा तो वो भी वापस लौट कर नीचे नहीं आएगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए वसुदेव जी के यहां पर जब भगवान नारायण स्वयं साक्षात प्रकट हो गए तो बताते हैं इसमें कह रहे हैं कि आज के श्लोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचे वसुदेव कि साक्षात भगवान है। निष्कर्ष पर पहुंचे, निष्कर्ष मतलब कोई लेबोरेटरी में नहीं थे कि कुछ केमिकल्स मिलाकर फिर निष्कर्ष पर पहुंचे, कोई रिसर्च किया। जैसे भगवान प्रकट हुए तो निष्कर्ष पर पहुंचे। निष्कर्ष पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है और सोचने समझने की शक्ति और भूलने की शक्ति भगवान हृदय से देते हैं। स्मृति ज्ञान अपोहनम च, स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं और भूलने की शक्ति परमात्मा रूप में हृदय में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे संसार में भगवान जब वैसे जब भी प्रकट होते हैं तो कुछ लोग जान पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। भगवद गीता कई लोगों ने पढ़ी, कईयों को समझ आई, कईयों को नहीं आई। कोई योग मार्ग में निकल गए, कोई कर्मकांडीय हो गए, कोई ज्ञान मार्गी हो गए, कोई गीता पढ़कर शिव मार्गी हो गए। हाँ, कि भाई शिव बाबा ने बोली है भगवान के अंदर से, तो अलग अलग मार्ग पकड़ लिया, खाली गीता पढ़ गई, हर जगह लगा श्री भगवान हुआ छे, लेकिन नहीं समझ आ रही गीता, क्योंकि हृदय में क्या है, परमात्मा अभी सेंक्शन नहीं कर रहे हैं उसको, उसका प्रयास देख रहे हैं, उसके कर्मों की लिस्ट देख रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं और उसके बाद उसको क्या देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अगर पूरे संसार में सब लोग भगवान के भक्त नहीं है तो इसका एक रीजन ये भी है कि अभी लोग क्वालिफाइड नहीं है, लोगों के पुण्य कर्म जागृत नहीं है और अभी वो इस योग्य नहीं है कि भगवान को समझ सके। तमोगुण रजोगुण जैसे गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन यहां वसुदेव तुरंत समझ गए और भगवान ने प्रकट होकर बोला कि वसुदेव एक जन्म में पहले कहीं पीछे तुम्हारा नाम सुतपा था और तुम्हारी पत्नी का नाम वृष्णि था, नहीं प्रश्नी प्रश्नी, तो तुमने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर घोर तपस्या की और उस तपस्या करने के बाद पूरा एक कल्प बीत गया, उसके बाद भी तुमने तपस्या नहीं रोकी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसी स्थिति, इतनी लंबी तपस्या, तो मैं प्रसन्न हुआ तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और मैंने बोला बाहो क्या मांगते हो। तो प्रश्न ने क्या बोला, भगवान हमें तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। मैंने कहा तथास्तु, लेकिन मैंने कहा अरे भाई मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, जैसा मतलब वैसे ही हो जाएगा फिर, वो दूसरा भगवान हो गया। एक मयान में कितनी तलवारें रहती हैं, एक ही रहती है, दूसरा कहां से आएगा भाई। और मांगा क्या है और मैंने बोल दिया क्या, तथास्तु। तो भगवान जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, भगवान के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। असम ऊर्ध्वा, ना तो कोई भगवान के समान है और ना ही कोई भगवान से ऊपर है। तो भगवान ने कहा कि मुझे लगा कि फिर कोई दूसरा नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा, तो मैं फिर प्रश्नी गर्भ पहला पुत्र तुम्हारा बना, प्रश्नी गर्भ के रूप में, फिर बाद में कश्यप और अदिति के गर्भ में आया वामन रूप में। वामन मतलब बोना, नाम था मेरा उपेंद्र, तो उपेंद्र के रूप में आया। और तीसरे अब वासुदेव और देवकी के आठवें पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तीन जन्म का कॉन्ट्रैक्ट था तो ये लास्ट है। तो जब समझा और जब देखा भगवान को ऐसे तो कहा हमें समझ गया लक्षणों से इन सब चीजों से कि आप साक्षात नारायण हैं, नारायण है। अब थोड़ा सा तत्व गहरा हो रहा है कि आप साक्षात नारायण हैं बोल रहे हैं, कौन वसुदेव, वसुदेव नारायण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वसुदेव का भाव द्वारका वाला ऑपुलेंट भाव है, ऐश्वर्य, इसलिए वो विष्णु से नारायण से आगे नहीं सोच सकते। नारायण विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं इस प्रकार और भी कहीं कहीं जितने भी हैं वो सारे 60 गुणों से युक्त हैं, तो नारायण बोल रहे हैं। और जब भगवान प्रकट हुए तो कितने हाथ हैं? 4 भुजाएं हैं। क्या हाथ में रखा हुआ है? शंख चक्र गदा और पद्म, कौस्तुभ मणि इत्यादि। तो यहां पर भगवान मोर मुकुट बांसुरी लगाकर नहीं आए, कौन सा रूप धारण किया हुआ है? नारायण विष्णु का रूप धारण किया है। और नारायण जैसे इससे ज्यादा वो जानते भी नहीं उनको, ये जो हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से गोलोक वृंदावन धाम की बात करते हैं ना, दशम स्कंध पढ़ पा रहे हैं, ये बड़े फॉर्चुनेट हम, ये वसुदेव जी को भी उपलब्ध नहीं है ये कहानी, क्योंकि नारायण भाव से आ सकते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती है कि नहीं, पत्नी पतिव्रता हैं लक्ष्मी जी, नारायण के चरण दबा रही हैं सदैव, लेकिन हृदय में इच्छा है क्या कि मैं गोलोक धाम में या यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में भाग लूं। तो भगवान ने कहा तुम भाग नहीं ले सकती, हे लक्ष्मी आप भाग नहीं ले सकते मेरी इस रासलीला में। क्यों? मुझमें और इनमें क्या अंतर है? ये तो गांव की ग्वालन है, छोटा मोटा घर का काम करने वाली, और मैं मेरी एक कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा और शिव भी जो है लाइन में लगे रहते हैं, अरे विष्णु के चरणों में बैठी रहती हूं, मेरा ऑपुलेंस तुम्हें पता नहीं है, सारे देवतागण थर्राते हैं, कांपते हैं, मेरी याचना करते हैं मुझसे, तो मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं, शहर की हूं, है ना, ऐसा बोला उन्होंने। कहते ये तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। कहते क्या मतलब? कहते ये जो गोपियां हैं ना, इनका जो भाव है सब कुछ त्याग कर अपने पति, अपने बच्चे, अपने सास, अपने ससुर, जो भी इनके बंधन है घर के, ये सब कुछ त्याग कर भी, ये बेशक गांव की ग्वालन है लेकिन इनके हृदय में मैं पूरी तरह से मुझे समर्पित है ये, और कुछ सब कुछ त्याग कर मेरे लिए तैयार बैठी हैं। तो कहते हैं जो इनका भाव है वो आपका भाव नहीं, आप तो ऐश्वर्यमय भाव से वैकुंठ के उससे जो है क्या हो, आच्छादित हो। कहती बट मैं रास में तो भाग लेना है मुझे, मैं तपस्या करूंगी। तो बेल वन में आज भी लक्ष्मी तपस्या करने की, कभी मेरा ऐसा जन्म हो कि मैं क्या कर सकूं, भगवान के रास में भाग ले सकूं। तो यहां पर रसों का क्या है, विभिन्नता है। उसी तरह जब वो कह रहे हैं वसुदेव, तो वसुदेव 4 भुजाओं वाले कृष्ण को देख पा रहे हैं या विष्णु को देख पा रहे हैं, लेकिन वो वसुदेव कृष्ण हैं। और तुरंत उन्होंने आज्ञा दी कि बस इसके बाद आप मुझे कहां ले जाओ, नंद महाराज के वहां ले जाना, और वहां पर यशोदा के यहां पर जो है लड़की जन्मी होगी उसको यहां ले आना, और वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण फिर पूर्ण कृष्ण यशोदा नंदन 2 भुजाओं वाले कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं। और वहां से जो बहन इधर आ गई योग माया सुभद्रा के रूप में, है कि नहीं सुभद्रा है, तो इधर वो आने के बाद याद होगा आपको, है कि नहीं, अब भगवान की जो ये दिव्य लीलाएं हैं माधुर्यमय लीलाएं, ये हरेक के हक की नहीं है, हरेक की बात नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की 2 भुजाओं वाली श्याम सुंदर रूप में जो गोलोक वृंदावन धाम में जो लीलाएं हो रही हैं वो हरेक के लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए जब द्वारका की रानियों ने रोहिणी को कहा कि आप बताओ ना, यहां पर तो हमारे पतिदेव कृष्ण जो है सदैव 16,108 रानियां हम इनको सर्व करती रहती हैं, इनके आगे पीछे घूमती रहती हैं, इनकी हर हां में हां ना में ना हमारा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मन वृंदावन की बाल्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट रहता है। हमें तो बस ये बताओ कि क्या हुआ था वहां पर, क्या लीलाएं हुई थी। वो आठ पांच सात साल आठ साल तो रहे वहां पर, वो बचपन की लीलाएं याद करते रहते हैं, बताओ। तो रोहिणी ने कहा, देखो कृष्ण बहुत समय से यहां द्वारका में है, और अगर मैंने लीलाएं बोली और उनके कान में पड़ी तो ये द्वारका छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, जो उनसे प्यार करता उन्हीं के पास चले जाएंगे। अब सारी रानियों को लगा भाई ये तो बड़ा चक्कर है, सुनना भी चाहती हैं, क्योंकि वो सुबह शाम कृष्ण के साथ रहती हैं, कितने सालों से कृष्ण के साथ हैं, लेकिन कृष्ण कहां का स्मरण करते रहते हैं, वृंदावन का। वो क्यूरियोसिटी, वो पूछना भी चाह रही है, और यहां कृष्ण चले ना जाए ये भी दिक्कत है, फिर भी कहा ठीक है दरवाजे पे किसको खड़ा कर दो, सुभद्रा को खड़ा कर दो। और जब रोहिणी ने बताना शुरू किया तो कृष्ण बलराम भी पहुंच गए वहां, तो अपनी वृंदावन की लीला सुन के उनकी ये स्थिति हो गई। अब देख सकते हैं कृष्ण बलराम जो लेफ्ट में खड़े हैं, मेन कृष्ण बलराम, कृष्ण सांवले और बलराम जी गोरे हैं। अपनी कथाओं को सुनकर जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा हो गए, बीच में देख लीजिए जरा। सांवले कृष्ण की हालत क्या हो गई, देखिए आंखें कैसे बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए, पांव हम सब गायब हो गए एक्सटेसी में, और बलदेव जी की भी हालत देखिए, देखने में ऐसे लगते थे ना, और ऐसे हो गए। और सुभद्रा जी जो खड़ी थी दरवाजे पे हाथ रख के भगवान ना आ जाए, तो उनकी हालत भी देखिए कृष्ण की लीला सुन के क्या हो रखी। तो यहां पर नंद महाराज के यहां पर जो प्रकट हुए कृष्ण, तो पूर्ण कृष्ण है वो, और सुंदर सुंदर लीलाएं की 64 क्वालिटीज, जिसमें जो 60 क्वालिटीज हमने बताई जो नारायण या विष्णु में है, लेकिन कृष्ण में 64 क्वालिटीज है। तत्व सब एक ही है लेकिन क्वालिटीज और रसास के हिसाब से अलग है। भगवान के पास जो चार मुख्य और क्वालिटीज हैं, जो गोलोक वृंदावन में जिसका प्रदर्शन होता है, वो कौन कौन सी हैं? रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये वो दिव्य लीलाएं भगवान ने की हैं जो और कोई अवतार नहीं करता, किसी और अवतार ने नहीं किया। नरसिंह भगवान आए तो कौन सा माधुर्य दिखाया उन्होंने? वेणु नहीं, ऐसे करते रहे तो वेणु थोड़ी बज रही थी। प्रेम माधुर्य दिखाया क्या? नहीं। रूप माधुर्य देखा? रूप माधुर्य देख के सब भाग गए, है ना। तो बड़ा मुश्किल है। और इन अवतारों में, विष्णु के अवतारों में चार भुजाएं हैं, ये चारों नहीं दिखते। भगवान राम वेरी रिस्ट्रिक्टेड, वेरी मर्यादा, मर्यादा फुल ऑफ मर्यादा नहीं। लेकिन जब कृष्ण पूर्ण रूप से आए तो फिर फ्री स्टाइल में खेला, है कि नहीं? एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों गोपियां नृत्य हो रहा उनके साथ, पूरा फ्री स्टाइल। अब तत्व को समझ लेते थोड़ा सा कि है एक ही लेकिन नहीं है। विष्णु नारायण कृष्ण सब एक ही हैं लेकिन नहीं भी हैं। तो कैसे है वो कि कृष्ण 64 क्वालिटी के साथ पूर्ण भगवान, और जब इस संसार का कुछ काम करना होता है, जब इस संसार से रिलेटेड कुछ करना होता है, वैसे गोलोक धाम में अपने निज धाम नहीं, अपने निज धाम में हमेशा अवेलेबल है, माधुर्य रस में आनंद ले रहे हैं, सांख्य रस में आनंद ले रहे हैं भक्तों के साथ। लेकिन इस संसार के लिए, इस भौतिक जगत की बात नहीं कर रहे, सब कुछ ही है इसके अंदर। पहले बलराम जी, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह, फिर नारायण, फिर चतुर्व्यूह, और उसके बाद तीन पुरुष, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु, ये तीन विष्णु। और गर्भोदक्षाई विष्णु तो जितने और ब्रह्मांड बने सबके अंदर चले जाते हैं, सबके अंदर जीवन है, सबके अंदर लिविंग बींग्स हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप में से शिरोदक्षाई विष्णु पहुंच जाते हैं, फिर सबके हृदय में परमात्मा रूप। और यही शिरोदक्षाई विष्णु जब हरेक ब्रह्मांड में थोड़ी उथल पुथल होती है, दिक्कत होती है, असुर बलवान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? मैनेजमेंट, या तो शिव जी और ब्रह्मा से काम करवाते हैं, नहीं तो खुद आ जाते हैं। यदा यदा ही धर्म से, बोल कौन रहा है ये श्लोक? यदा यदा ही धर्म से कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। अब और समझने वाली बात क्या है कि ये जो कृष्ण बोल रहे हैं ये वसुदेव कृष्ण है। 16 साल वाले कृष्ण यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति वाला काम ही नहीं है उनका, उनका संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो माधुर्यमय वात्सल्यमय लीलाओं में भगवान गोलोक धाम में उधर आनंद में है। तो वो जो इतने सारे अवतार लिए तो उसमें से जो शिरोदक्षाय विष्णु हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान भगवत गीता में। वो कह रहे हैं भाई यस, वसुदेव कृष्ण कह रहे हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूं। ये नहीं बोला जब जब धर्म की हानि हो तो शिरोदक्षाय विष्णु आते हैं। जैसे कई बार अर्जुन को बोला कि तुम जाओ उनकी शरण में जाओ, किनकी? गीता में बोला परमात्मा की शरण में जाओ, बोला ना भगवत गीता में बोला कि मेरा जो दूसरा एस्पेक्ट है रियलाइजेशन का परमात्मा, उनकी शरण में जाओ। तो यहां पर शिरोदक्षाय विष्णु नहीं बोला कि शिरोदक्षाय विष्णु करते हैं, कह रहे मैं करता हूं। जैसे एक कंपनी का मालिक बोलता है जब वो देखता मार्केट में उसका मैन्युफैक्चर जो वो करता है उसका प्रोडक्ट पड़ा है तो दूसरे को क्या बोलता है कि मैंने बनाया है, क्या बोलता है? हाँ, कंपनी में बैठे हो गए उसको एक वीडियो कैमरा दिखा तो वो बनाता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? माल प्रिक्योर करता है, लेबर लगाता है, बनाता है, सुपरवाइज करता है, प्रोडक्ट बाहर निकलता है, लेकिन हर जगह बोलता है ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैंने बनाया है, ये मेरा माल है। तो कोई सोचेगा इसने बनाया शायद, नहीं मैं तो हाथ में नहीं लगाता। तो वही है, कृष्ण बोल तो रहे हैं लेकिन काम शिरोदक्षाय विष्णु कर रहे हैं और यहां पर वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिरोदक्षाय विष्णु को वसुदेव कृष्ण रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान ये शिरोदक्षाय विष्णु से अवतार ले लेकर आते हैं। लेकिन अब इसको और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि जिस प्रकार हम इस संसार में हमारी शक्ति लिमिटेड है, हमारा हम एक्सपेंशन तो नहीं कर सकते अपना, हम लिमिटेड जीव हैं, दो हाथ हैं, पूरा एक शरीर दिया है भगवान ने, तो लिमिटेड हम, तो लिमिटेड होने का मतलब क्या हुआ? लेकिन हम काम जो करते हैं, बेशक अनलिमिटेड काम करते हो लेकिन इस लिमिटेड बॉडी से करते हैं। कैसे? सुबह उठना, जॉगिंग के लिए जाना तो ट्रैक सूट पहनना, तो एकदम अलग तरीका होता है उठने बैठने का उस समय हमारा, है ना? किसी से बात भी करो तो पैर हिलाता हुआ कहते और सुनाओ क्या हाल चला, सब ठीक है? कहां पर लगा हुआ जॉगिंग का टाइम है तो उसने कहा ठीक है और सब ठीक चल रहा है, ऐसे करता रहेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि उस समय वो खुद किस रूप में? जॉगिंग के रूप में। और बताओ सब ठीक है घर में? हाँ जी सब ठीक है, ऐसा करेगा वो ताकि कमर की भी होती रहे। और जब वो घर आ जाएगा नहाएगा धोएगा, उससे पहले गमछा पहनेगा या तैयार रहेगा, तो उसका एक अलग रूप है। अब वो ऐसे ऐसे करेगा लेकिन ये पार्क में नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे फवारे के नीचे करेगा। फिर बाहर आने के बाद धोती पहन लेते हैं, क्या करना है अब? पूजा करनी है, तो पूजा करने के लिए अलग डूज और डोंट्स हैं उसके लिए। फिर उसके बाद पूजा के कपड़े उतार के टाई पहन लेगा, ऑफिस जाने के लिए तैयार है, तो उस समय एकदम अलग हो गया व्यक्ति वो। और फिर ऑफिस जाने के बाद बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज, हाँ जी बोलो क्या काम है, अच्छा माल भेज दो भाई साहब, अच्छा ये कर दो भाई, बिल्कुल अलग आदमी है। बच्चा आता है पापा ओए उधर बैठ, पापा पापा बैठ इधर, ऐसे है ना। वाइफ भी आ जाती है पापा पे तो कोई देखता नहीं, पैरी पोना भी कर देता जी, पैरी पोना जी, है कि नहीं? बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। चलो ऑफिस का काम खत्म, शाम को फिर घर आ गया, फिर कपड़े वपड़े उतारे उसने, चलो जी वहां चलते हैं, कहाँ घूमने चलते हैं जी, तो एकदम दूसरे कपड़े पहन लिए, तो वहां पर एक अलग तरीके से। फिर रात को आया नाइट ड्रेस पहन लिया। तो एक आदमी लिमिटेड है लेकिन एक ही दिन में कई अवतार ले रहा है, वो है लिमिटेड, काम है बेशक अनलिमिटेड कर रहा हो लेकिन उसके लिए हर चीज अलग है। उसी तरह अब मान लीजिए ऑफिस में है, अब ऑफिस में रिस्ट्रिक्टेड है, भाई आगे पापा आगे सब आगे, तो वहां पर ये व्यक्ति अगर वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड है, बड़े पॉलिश वे में सारी चीजें करता है, लेकिन दरवाजा बंद करके क्या करेगा वो? छोड़ यार बहुत हो गया, आ मेरे बेटे कंधे पे आ जा मेरे, घोड़ा बन जाता हूं तेरे लिए, कर सकता है, वैसे करता नहीं है सबके सामने, कर सकता है। पिताजी को पारी पाना भी करेगा, वाइफ को भी गले लगाएगा, क्या लाए खाने में, चलो जी बहुत अच्छा पंजाबी में गाल करेगा, है कि नहीं? तो सारे के सारे रिश्ते कभी तोड़कर वो काम करता है। आदमी वही है जो सुबह निकला था, दोपहर में हुआ ऑफिस आया था, बिल्कुल ऐसे ऐसे घूर घूर कर देख रहा सबको, अभी ऑफिस में जाके अंदर जाकर क्या हो गया, एकदम भाव बदल दिया। तो उसी तरह जो भगवान अपने किसी भी रूप से कोई भी अवतार ले सकते हैं, समझ पा रहे हो, कोई भी कल्चर चल रहा होगा उसके बीच में कहीं से भी कृष्ण में 64 क्वालिटी के साथ प्रकट हो सकते हैं। तो जब वो शिरोदक्षिणा विष्णु या वसुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, और यहां प्रकट हो गए चार भुजाओं के साथ 60 क्वालिटीज वाले विष्णु, और उसके बाद अब ये नंद महाराज के यहां जा रहे हैं, तो नंद है तो वही, लेकिन आगे जाकर जैसे असुर देखे और राधा रानी इत्यादि देखे तो हो गए मेन वाले, आ गए कृष्ण, उतारो भैया ये सब 64 क्वालिटीज वाले हो गए हम फिर से माधुर्य रस और ये सब। और जैसे कोई असुर उसुर आया तो फिर 64 की जगह 60 कर लिया और मारा कान पर ढिशुम करके घोड़े को, और उसको मारा अरिष्टासुर को, और उसको फिर 60 वाले हो गए। समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ गए बात को? ठीक, आधे तो समझ गए, सक्सेस। तो व्यक्ति एक ही है, तो कभी 60 करे कभी 64 करे, मर्जी है उनकी। तो इस अवतार में भी भगवान कृष्ण लीला में भी, अब जब द्वारका गए तो फिर 60 कर लिए, समझ पा रहे? फिर वहां वसुदेव कृष्ण है, वो असुरों के साथ मार रहे हैं। अरे भगवान को देख कौन सकता है भाई, यहां तो महाविष्णु भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए लीला कर देते हैं, वो ब्राह्मण के सारे बच्चे गायब कर लिए, उनको मार दिया। अर्जुन ने कहा मैं देखता हूं कौन मारता है उसको, पूरी रक्षा करी द्वारका में, उसके बाद भी मर गया बच्चा। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं बचा ही नहीं पाया। कहते भाई किसने कहा था ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा लेने के लिए? कहते चलो ढूंढ के आते हैं, चलो साथ देते हैं। तो गए कृष्ण और अर्जुन, तो कहां मिले जाके? वो गर्भदक्षा विष्णु पहुंच गए, वहां चले गए, वहां देखा उसमें पहुंच गए, वहां पर विष्णु थे, महाविष्णु लेटे हुए थे। भगवान कृष्ण को देखते जंप लगा दी उन्होंने सांप के ऊपर से, शेष के ऊपर से, पूरा दंडवत प्रणाम मारा भगवान को। कहते भगवान धन्यवाद, आपका दर्शन करना था आज, दो भुजा वाला रूप हमें तो होता ही नहीं है, काम धंधे में लगे हैं सुबह से शाम तक, तो ये आपका दर्शन करना था इसलिए ब्राह्मण के बच्चे बच्चे मैं गायब कर देता था, तो ले जाओ मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं दर्शन करना था आपका। ये हालत है भगवान विष्णु की, कृष्ण का दो भुजा रूप देखने के लिए ये काम चल रहा है, समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है जो कृष्ण है वो पूर्ण भगवान है, विष्णु भी पूर्ण भगवान है, एक ही बात है, लेकिन ऑफिशियल काम करने के लिए विष्णु बने हुए हैं, और जहां कहीं उनको प्रकट करना हो तो अपने को 64 क्वालिटीज के साथ कर सकते हैं। तो यहां पर अभी जो प्रकट हुए हैं कहां पर? वसुदेव के यहां जेल के अंदर कौन पैदा हुए हैं? कृष्ण ही है, लेकिन किस रूप में है? विद 60 क्वालिटीज नारायण के रूप में आए हैं, है ना, विष्णु के रूप में है। तो इसलिए उन्होंने देखा और सारा उनका वो खत्म हो गया। बोलिए हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा? ठीक है, ग्रंथ राशि में भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताय गौर पे मनन है।